मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में टीकाकरण दरों में वृद्धि के रूप में अधिक स्वतंत्रता का वादा, क्वींसलैंड के व्यवसायों को वित्तीय सहायता के लिए 2 सप्ताह तक की प्रतीक्षा और ओलंपिक 2020 में भारत की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। क्वींसलैंड के कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित व्यवसायों और श्रमिकों को वित्तीय सहायता के लिए 2 सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ट्रेजरर कैमरन डिक का कहना है कि $260 मिलियन का समर्थन कार्यक्रम जल्द से जल्द तैयार होकर कार्यान्वित हो जाएगा। कोविड-19 के 13 नए स्थानीय मामले दर्ज किए जाने के बाद क्वींसलैंड ने 11 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में अपना लॉकडाउन रविवार 8 अगस्त शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया है। श्री डिक ने कहा कि 2021 का व्यवसाय सहायता योजना कार्यक्रम व्यवसायों की सहायता करेगा।
That'll be $5,000 grants available to Queensland businesses, not just businesses in the lockdown area. That'll be available to all Queensland businesses, and that recognises the impact that the Delta variant has had on those businesses, because it stopped the visitors, it stopped the tourists coming from other parts of the country who are also in lockdowns.
न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लेन का कहना है कि उच्च टीकाकरण दर ही 29 अगस्त तक लगे प्रतिबंधों में दी जाने वाली ढील का निर्धारण करेगी। कोविड-19 के 207 स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामलों के साथ आज वहां एक मौत भी दर्ज की गई है। कम से कम 50 मामले संक्रामक होने पर समुदाय में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। समरहिल में एक वृद्ध देखभाल सुविधा के 18 वृद्ध निवासियों और 2 स्टाफ सदस्यों ने भी सकारात्मक परीक्षण किया है। न्यू साउथ वेल्स ने लगभग 3.9 मिलियन तक जैब्स प्रशासित किए हैं। सुश्री बेरी जिक्लिन का कहना है कि 70% आबादी या 9.2 मिलियन लोगों का टीकाकरण हो जाना ही लॉकडाउन में लगे प्रतिबंधों में और ढील दे सकेगा।
And we can also sense that what the world looks like on the 29th of August will be determined by what happens in the next 4 weeks. And part of that, a large part of that, is up to all of us. Getting higher rates of vaccination, sticking to the health rules, really allows us to have a fighting chance to have a better level of freedom, obviously, than what we have now. And that's our aim.
New South Wales ke police ayukt Mick Fuller ka kehna hai ki Sydney mein adhik sankhya mein ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल के होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 300 ADF के जवान पुलिस को गश्त और दरवाजों पर दस्तक देने में मदद करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग आत्म अलगाव और घर में रहने वाले आदेशों का पालन कर रहे हैं। सिडनी के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में 8 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किया गया है। श्री फुलर का कहना है कि लगातार उच्च दैनिक मामलों की संख्या के कारण अनुबंध अनुरेखण यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सहायता की आवश्यकता है।
If you think about 200 positive cases, then the work health do with contact tracing, that could be 1,000 doors we need to knock just on today's statistics alone. They will be helping with some sense of ensuring people are complying with the health orders, but that could be as simple as making a phone call to a household. It could be dropping care packages off to houses. It could be helping contact tracers. There are a myriad of roles and responsibilities.
स्कूलों में जुड़े प्रकोपों के बाद इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और स्वदेशी बच्चे अब फाइजर वैक्सीन प्राप्त करने में सक्षम हैं। 9 अगस्त से रोल आउट के फेज 1B के तहत 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को टीके की सुविधा दी जाएगी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर माइकल किट का कहना है कि ये नई सलाह कोविड-19 के डेल्टा संस्करण से जुड़ी चिंताओं को दर्शाती है।
The current outbreak in Queensland is linked to a number of schools, and so we have seen school-aged children who've been diagnosed positive over the last few days. What we're also seeing, and particularly in Sydney, is a larger number of young adults who've been infected with COVID-19 being hospitalised, and increased numbers ending up in the intensive care units.
Victoria, New South Wales के साथ अपनी सीमा पर गैर जरूरी आवाजाही को सीमित कर रही है। आज रात 11:59 से न्यू साउथ वेल्स के निवासी केवल चिकित्सा देखभाल और काम सहित 6 कारणों से ही राज्य की सीमाओं को पार करने में सक्षम होंगे। ये उपाय केवल न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया सीमा बॉर्डर बबल निवासियों पर ही लागू होता है। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि गैर आवश्यक कारणों से सीमा पार करने वालों पर $5,400 से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि देश में टीकाकरण कवरेज लक्ष्य तक पहुंचने तक लॉकडाउन महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि कोरोना वायरस के डेल्टा संस्करण के आगे प्रसार को रोकने के लिए भारी प्रतिबंध बनाना आवश्यक है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस वर्ष ये पहला लक्ष्य यानी पहला मील का पत्थर हासिल किया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया 70% लोगों को पूरी तरह से टीका लगाने का लक्ष्य बना रहा है ताकि घातक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इन अलग अलग चरणों को बदला जा सके। उस अगले चरण के तहत लॉकडाउन की संभावना कम होगी और 80% कवरेज से शहर भर में बंद होने की संभावना भी अतीत की बात हो जाएगी। श्री मॉरिसन ने 4BC रेडियो को बताया,
We start saying goodbye to them at 70% and they become basically pretty much a thing of the past when we hit 80%. We've now got about 1 in 5 Australians fully vaccinated.
अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फोसी भविष्य में कुछ कठिनाइयों की चेतावनी दे रहे हैं। अगर अधिक अमेरिकियों ने टीका नहीं लगवाया तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर फोसी का कहना है कि हाल ही में अमेरिकियों में शॉट्स लेने में वृद्धि तो हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले भी बड़े पैमाने पर अधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल लगभग 60% अमेरिकियों ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है। डॉक्टर फोसी का कहना है कि इतने सारे अमेरिकियों ने अभी भी टीकाकरण नहीं कराया है तो इससे महामारी और भी बदतर होती जाएगी।
In the breakthrough infections, they are mostly mild or without symptoms, whereas the unvaccinated, who have a much, much, much greater chance of getting infected in the first place, are the ones that are vulnerable to getting severe illness that might lead to hospitalization and in some cases, death.
भारत जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर से 4 संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार सेना के कैंप के पास ये ड्रोन दिखाई दिए हैं। सांबा के SP राजेश शर्मा के अनुसार 4 अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन दिखाई दिए जो 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश हो रही है। और भारत में कोरोना के मामले काफी समय से 40,000 के आसपास बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में भी 40,134 नए COVID-19 केस सामने आए और 422 लोगों की मृत्यु हुई है। रिकवरी रेट वर्तमान में 97.35% पर बना हुआ है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 73 सेंट और भारत के ₹54.66 के बराबर है। खेल समाचारों में, भारत की गुरजीत कौर के गोल और रक्षा पंक्ति के बेहतरीन प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में जगह बनाकर नया इतिहास रचा। भारतीय हॉकी टीम अपने पूल में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड को हराकर 4th स्थान पर रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने पूल में शीर्ष पर था। भारतीय पुरुष टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और उधर रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता PV सिंधु ने चीन की ही विंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन में कांस्य पदक अपने नाम किया है। मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 17°C, न्यूनतम 60°C। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 13°, न्यूनतम 8°। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 13°, न्यूनतम 8°। होबार्ट में 1-2 बौछारें, न्यूनतम तापमान 4° और अधिकतम 13°C। कैनबरा में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में सुबह के समय बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।